नमस्कार भारत, तारीख 11 जून दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। सीरिया में कथित इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का में आगे बढ़ी अमेरिका समर्थित सेना, भीषण संघर्ष के बीच मुश्किल में आम लोग और बच्चे।
Children are in a terrible mental state. It's a city of death. Anyone can die anytime.
यूपी बोर्ड के नतीजे आने के बाद फतेहपुर को क्यों कहा जा रहा है टॉपरों का जिला, सुनवाएंगे खास रिपोर्ट। होगी उर्दू अखबारों की समीक्षा और खेल की भी खबरें।
नॉकआउट सिचुएशन है, रणनीति तो यही रहेगी कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो एक बड़ा लक्ष्य बनाएं, अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं 250 के अंदर साउथ अफ्रीका को आउट करें।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। सीरिया में अमेरिका समर्थित सीरियाई सेनाओं ने कथित इस्लामिक स्टेट की अघोषित राजधानी रक्का पर शिकंजा कस दिया है। सीरियाई डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी SDF ने कहा है कि सेनाएं पश्चिमी इलाके की तरफ से रक्का की तरफ बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते SDF ने पूरब की तरफ से रक्का पर धावा बोला था। ईरान के खुफिया मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने पिछले हफ्ते तेहरान में हुए चरमपंथी हमले के मास्टरमाइंड को मार दिया है। हालांकि मंत्रालय ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि उसे कहां और कैसे मारा गया। तेहरान में संसद और आयतुल्ला खुमैनी की मज़ार पर हुए हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई थी। मेक्सिको की यात्रा पर गई जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दीवार खड़ी करने से प्रवासन की समस्या खत्म नहीं होगी। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की बात कही थी। मर्केल ने कहा, सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि लोग अपनी जगह क्यों छोड़ना चाहते हैं। दीवार खड़ी करने से समस्या नहीं सुलझेगी। दूसरे देशों की मदद, विकास कार्यक्रमों और उनके लिए रोजगार के मौके बनाकर वहां के लोगों का जीवन स्तर उठाया जा सकता है। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। लीबिया के पूर्व नेता कर्नल गद्दाफी के सबसे छोटे बेटे सैफ अल इस्लाम को जेल से रिहा कर दिया गया है। पश्चिमी लीबिया के शहर जिंटान पर नियंत्रण रखने वाले एक जिहादी संगठन ने शुक्रवार को उन्हें रिहा किया। कर्नल गद्दाफी को साल 2011 में सत्ता से बेदखल करने के बाद सैफ को गिरफ्तार किया गया था। 4 साल बाद त्रिपोली की एक अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई थी। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन ने कहा है कि जेम्स कोमी की गवाही के जवाब में वो मंगलवार को सीनेट की इंटेलिजेंस समिति के सामने पेश होंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के पूर्व प्रमुख कोमी ने पिछले हफ्ते सीनेट के सामने गवाही दी थी और उन्होंने ट्रंप के बारे में कहा था कि FBI के बारे में उन्होंने झूठ बोला। जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमर गैब्रियल ने चेतावनी दी है कि कतर और खाड़ी देशों के बीच विवाद युद्ध में बदल सकता है। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ बातचीत में गैब्रियल ने कहा, जर्मनी यूरोपीय मित्रों के साथ मिलकर इस संकट को सुलझाने की हर संभव कोशिश करेगा। इसे जल्द सुलझाना होगा ताकि हम असली दुश्मन यानी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हम सभी को मिलजुल कर इस पर काम करना होगा और कतर इसका हिस्सा है। ये थे जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमर गैब्रियल के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। चैंपियंस ट्रॉफी में कल इंग्लैंड ने डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 40 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ग्रुप ए में मेजबान इंग्लैंड और बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहम मुकाबला आज ओवल में खेला जाएगा। ग्रुप बी में मामला अभी उलझा हुआ है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान ने 2-2 मैच खेले हैं और 1-1 मैच ही जीत सके हैं। लातविया की एलेना ओस्तापेंको ने फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ओस्तापेंको ने रोमानिया की सिमोना हिलेप को 4-6, 6-4, 6-3 से हराया। 20 वर्षीय ओस्तापेंको फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली गैर वरीय खिलाड़ी हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव।
The city is on high alert. The mood is of war. It's a city of death. Anyone can die anytime.
ये मौत का शहर है जहां कोई भी कभी भी मर सकता है। यह कहना है सीरिया में कथित इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का में गुपचुप तरीके से एक वीडियो तैयार करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता का। नमस्कार भारत में आज हम सबसे पहले रक्का की ही बात करेंगे। रक्का पर साल 2014 से ही इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही लड़ाकों ने रक्का को मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया हुआ है और उनका दावा है कि वो आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भीषण संघर्ष के बीच आम लोगों खासकर कई बच्चों की जिंदगी खतरे में घिर गई है। पूरा ब्यौरा बता रहे हैं दिनेश उप्रेती।
अमरीकी नेतृत्व में सीरियाई सेनाओं ने कथित इस्लामिक स्टेट की अघोषित राजधानी रक्का पर सिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सीरियाई डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी SDF ने कहा है कि सेनाएं पश्चिमी इलाके की तरफ से रक्का की तरफ बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते SDF ने पूरब की तरफ से रक्का पर धावा बोला था। SDF ने कहा है कि उनके सैनिकों को जिहादियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। ये हालत तब है जब अमेरिका ने हवाई हमलों से गठबंधन सेना के लिए रक्का में घुसने का रास्ता कुछ आसान किया है। सीरिया में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली संस्था का कहना है कि SDF रक्का को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। संस्था के प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने बताया,
SDF ने अल सबाहिया के पश्चिमी हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। इसके बाद वे इससे सटे जिले अल रोमानिया की ओर से आगे बढ़ रहे हैं और वहां कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से लड़ रहे हैं।
ये थे रामी अब्देल रहमान के शब्द। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने रक्का को मौत का शहर कहा है। यहाँ कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के इस गढ़ में 40,000 से अधिक बच्चे खतरनाक स्थिति में हैं। जिनेवा में यूनिसेफ के प्रवक्ता क्रिस्टोफ बोलियार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में रक्का पर हुए हमलों में 255 बच्चे मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। हालांकि बोलियार्क ने बच्चों के मारे जाने की जगह के बारे में सटीक जानकारी नहीं दी है। इस बीच BBC को रक्का में गुपचुप तरीके से तैयार एक वीडियो मिला है जिसमें शहर के अंदर की स्थिति की जानकारी दी गई है। ये वीडियो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने तैयार किया है। उन्होंने बताया,
We've named ourselves Ahrar al-Furat. And anyone inside Raqqa that defies that.
हमने अपने संगठन का नाम अहरार अल फुरात बताया। मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के रूप में हमारे लिए सबसे कठिन काम सूचना सामग्री को रक्का से बाहर निकालना था। कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाके हर चीज पर नजर रखते हैं, इसलिए हमारे नेटवर्क के सदस्यों को रक्का के अंदर जान का खतरा था। शहर जंग के मूड में है और गलियों में लड़ने की तैयारियां हो रही है।
ये थे वीडियो बनाने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता के शब्द। रक्का साल 2014 से कथित इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। सीरिया में 2011 में गृह युद्ध शुरू होने से पहले रक्का में तकरीबन 2.5 लाख लोग रहते थे, जिनमें से 1 लाख लोग अब पलायन कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक रक्का के भीतर इस्लामिक स्टेट के 4,000 लड़ाके हैं और शहर पर नियंत्रण करने के लिए SDF को इनसे कड़ी टक्कर मिल सकती है।
ब्यौरा सुना रहे थे दिनेश उप्रेती।
मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को जो फीमेल्स हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा कीमती हैं, तो अपने सपनों को जिंदा रखिए और उसके लिए कुछ अगर कीमत भी चुकानी पड़े तो डरिए मत।
सीरिया हो या फिर भारत, जब मुश्किलें हो, सपने टूटते से लगे, तब हौसला कैसे बुलंद रखना है, सपनों को कैसे सच करना है, ये उनसे बेहतर कौन बता सकता है जिन्होंने मुश्किलों का अग्निपथ पार किया हो। हमारे बहुत से श्रोता पहचान रहे होंगे ये आवाज जो अभी हमने सुनाई है, वो है उम्मुल खैर की। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली उम्मुल कल BBC इंडिया बोल में मेहमान थीं। उन्होंने और क्या कहा हम आगे सुनवाएंगे। फिलहाल बात एक और सपने की, हिंदू राष्ट्र का सपना। समाज और राजनीति में राजधर्म का जिक्र अक्सर होता है, लेकिन इन दिनों राष्ट्र का धर्म तय करने की मांग उठ रही है। गोवा में 14 से 17 जून तक एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य है साल 2023 तक भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की मांग उठाना। सम्मेलन का आयोजन कर रही हिंदू जनजागृति समिति के अध्यक्ष रमेश सिंधे से हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की।
यदि ये हिंदुओं का बहुसंख्यक राष्ट्र है तो फिर ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को रखा है।
जब हम भारत के फैब्रिक को देखते हैं, जब उसके सोशल फैब्रिक को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत से अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसको साकार कैसे किया जाएगा?
यदि हम इसको कानून और एंगल से देखेंगे तो भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1951 में, उसमें तो कोई ये सोशल रिपब्लिक और सेक्युलर स्टेट ऐसे कुछ नहीं था। 1976 में इसको 42nd अमेंडमेंट करके उसमें डाल दिया गया। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाते हैं और उसको सेक्युलर आप बाद में घोषित करते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने में समस्या क्या है?
आपने संविधान की बात की, तो मौजूदा संविधान में धर्मनिरपेक्षता है और भेदभाव की बात नहीं की गई है, तो ऐसे में क्या आप संविधान में बदलाव की बात भी कर रहे हैं?
डेफिनेटली संविधान में भी बदलाव होना चाहिए। इसमें सबसे मूलतः बात जो है कि हम कहते हैं कि संविधान में भेदभाव की बात नहीं है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि यदि मैं एक सेक्युलर स्टेट में रहता हूँ तो क्या सरकार धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से कोई चीज देखती है? अब एक उदाहरण लेते हैं, कोई हज के लिए जाना चाहता है तो उसको 826 करोड़ रुपया यहाँ से अनुदान मिलेगा, और कोई कुंभ के लिए जाना चाहता है तो उसके रेलवे टिकट में भी आप 15 रुपया टैक्स ले लेंगे वहां पर। यदि यहाँ पर रहने वाला मुस्लिम वो माइनॉरिटी है, उसके लिए उसको सच्चर कमीशन आ गया, उसको बेनिफिट्स मिल गए, तो फिर अगला प्रश्न तो ये आता है कि जो मेजोरिटी है, आप यदि कश्मीर में 96% है, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में आपका परसेंटेज 65% है, तो आप तो मेजोरिटी हो गए, तो मेजोरिटी में रहकर के माइनॉरिटी के स्टेटस कैसे आप ले सकते हैं, वहां पर बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? संविधान क्या कहता है वो बात अलग है, और संविधान का उपयोग करके जो आज वास्तविक रूप में किया जा रहा है वो बात अलग है। ये जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को समाप्त करने की आवश्यकता है।
क्या हिंदू राष्ट्र का जो सपना है उसको साकार करने के लिए आप सरकार पर भी दबाव बनाएंगे?
सरकार पर तो दबाव होना ही चाहिए। हम तो अभिनंदन करते हैं कि खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र का पक्षधर हूँ। संघ के हर दिन जो प्रार्थना होती है उसमें स्वयं हिंदू राष्ट्रांग भूता सेकंड लाइन में हर दिन बोलते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत में। तो ये है, शिवसेना ने भी कल बोला है कि मोहन भागवत जी को प्रेसिडेंट बना दो क्योंकि हिंदू राष्ट्र लाना है। हर एक तो चाहता है कि हिंदू राष्ट्र हो।
ये थे रमेश सिंधे और उनसे बात कर रही थी मानसी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए और इसके साथ ही छोटा सा जिला फतेहपुर अचानक चर्चा में आ गया। दरअसल बोर्ड परीक्षा में इस जिले की छात्राओं ने पहला स्थान प्राप्त किया। टॉपरों की सूची में यहां के कई छात्रों का भी नाम है। पूरा ब्यौरा सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
यूं तो प्रतिभा किसी जगह या सुविधा की मोहताज नहीं होती है, लेकिन यदि अचानक किसी एक जगह से टॉपरों की बाढ़ सी आ जाए तो ध्यान खींचना लाजिमी है। कुछ ऐसा ही हुआ फतेहपुर जिले में, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉपरों की लिस्ट में यहां के छात्र छात्राओं का बोलबाला रहा। हाई स्कूल और इंटर दोनों ही परीक्षाओं में इसी जिले की लड़कियों ने टॉप किया, तो इंटर में 14 टॉप छात्रों में से 7 यहीं के हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में फतेहपुर के सरस्वती बाल मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा प्रियांशी तिवारी ने राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त किया, तो उनके स्कूल की ही 3 अन्य छात्राएं भी टॉपर की सूची में हैं। प्रियांशी तिवारी ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि वो चारों ही न सिर्फ एक ही कॉलेज की हैं, बल्कि एक ही सेक्शन की हैं और एक ही जगह उन्होंने परीक्षा भी दी थी।
जी सर, हमारे कॉलेज में गर्ल्स का एक ही सेक्शन है और चारों गर्ल्स हैं, तो एक ही सेक्शन। अब सर आपने टॉपर लिस्ट को देखा ही है, 1, 2, 3 नंबर ऐसे ही आगे पीछे है, तो 2-3 नंबर से आगे पीछे तो सब लोग कोई इतना मतलब क्रम से तो नहीं सोच रहा कि नहीं इसका पहला आएगा, इसका दूसरा आएगा, इसका तीसरा आएगा, इसका चौथा आएगा, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। हमने भी नहीं सोचा था कि यूपी टॉप में आ सकता है।
वही हाई स्कूल की परीक्षा में भी फतेहपुर के SGM इंटर कॉलेज की छात्रा तेजस्वी सिंह ने टॉप किया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही परीक्षाओं में राज्य भर में टॉप 50 लोगों में आधे से ज्यादा इसी जिले के छात्र हैं। फतेहपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल कहते हैं,
असल में हमारे पास तो केवल जो सूचना है वो केवल 2 की है, जो इंटर के और हाई स्कूल टॉपर है। असल में मेरिट लिस्ट कोई जारी तो होती नहीं है बोर्ड से, स्कूल वाले अपना अपना नेट से निकाल लेते हैं, हमें एक आधी का टाइम निकलेगा जो जो स्कूल हमारे हैं उनको समराइज करूँ तो बता पाऊँ मैं। अलग अलग जो समाचार पत्रों में छप रहा है वो अलग अलग छप रहा है, यही बात है कि दोनों स्कूल की जो जनमानस में छवि है वो अच्छी, मतलब इनकी कोई निगेटिव शिकायतें नहीं मिलती थी कभी।
वही इंटर की परीक्षा में पहला स्थान पाने वाली प्रियांशी तिवारी का कहना था कि उनके स्कूल में पढ़ाई का माहौल काफी अच्छा है, लेकिन सफलता छात्रों की मेहनत और उनकी मेधा पर निर्भर करती है।
देखिए सर, हर कॉलेज का मतलब पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, फिर हर स्टूडेंट की बात होती है कि कौन सा स्टूडेंट कितना कैच करवाता है, तो मेनली हम यही कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट जितना मतलब ब्रिलियंट होगा, जितना जल्दी हर एक चीज कैच कर लेगा, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, ये कॉलेज का इसमें कोई हार नहीं होता है, स्टूडेंट की अपनी मेहनत होती है, कॉलेज तो अपना सहयोग प्रदान करता है, वो तो अपनी मेहनत करते हैं, जो बच्चों को दिक्कत होती है वो उन्हें बताते हैं, तो दोनों का मतलब कॉमन होता है।
समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब बात UPSC के सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल करने के बाद मिसाल बनी उम्मुल खैर की। वो कभी झुग्गी में रहती थी, वो ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जो हड्डियों को बेहद कमजोर बना देती है, यानी मुश्किलें कई थीं लेकिन वो उम्मुल को रोक नहीं पाई। उम्मुल ने कल BBC इंडिया बोल में अपनी कामयाबी और जिंदगी के तमाम पहलुओं पर हमारे साथी संदीप सोनी से बात की, आप भी सुनिए चुनिंदा अंश।
मेरा जन्म राजस्थान के पाली नाम के जिले में हुआ और जिस खानदान से मैं संबंध रखती हूँ वहाँ पे ज्यादा शिक्षा का माहौल नहीं है। मैं 10 महीने की थी तो पिताजी दिल्ली आ गए थे हमें और मेरी माताजी को राजस्थान में छोड़कर। जब घर में बहुत ज्यादा माली हालत खराब हुई तो उसकी वजह से मुझे राजस्थान पापा के पास भेज दिया गया, ताकि घर में अगर एक खाने वाला अगर कम हो जाएगा तो थोड़े से पैसे बचेंगे। दिल्ली में पापा हजरत निजामुद्दीन के पास में बारापुला नाम के एक जगह पे झुग्गी बस्ती में रहा करते थे। एक छोटा सा घर था, झुग्गी थी, दीवारें जो थी वो फट्टों की बनी थी, लकड़ी के फट्टे थे, बलियां थी और बलियों में दीमक लग गया था तो दीवारें बिल्कुल गिरने के लिए तैयार थी कि किसी भी वक्त हमारी वो दीवार घर वगैरह टूट सकता था। तो इस तरह का घर था, इस तरह की जिंदगी थी, मगर एक संतुष्टि थी कि हाँ घर है। लेकिन 2001 में अनाधिकृत क्षेत्र था तो वहां पर रिहायश की इजाजत नहीं थी, 2001 में झुग्गियां टूट गई, हम बेघर हो गए। तो फिर हम लोगों ने देखा कि कहाँ रहना चाहिए, तो पापा त्रिलोकपुरी आ गए और त्रिलोकपुरी में हमने किराए का एक मकान ले लिया। मैं जब तक 7वीं कक्षा में थी तब तक घर का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहा था, क्योंकि मेरी माताजी भी मेरी दूसरी मम्मी है। तो ऐसे में बार बार ये कहने के लिए मुझे सुनने के लिए मिलता था कि हमारे यहाँ पे लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती और हमारे यहाँ लड़कियां बाहर नहीं जाती। तो जब मैंने उनसे जिद की कि नहीं मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने कहा था कि अगर हमारे साथ रहना है तो जिस तरह हम कहेंगे और तुम्हारी वजह से हम अपने खानदान की बदनामी नहीं होने देंगे। फिर जब उन्होंने मुझे नहीं कहा कि हम आपको राजस्थान भेज देंगे तो फिर बहुत मजबूरी में।
जब कोचिंग पढ़ा रही थी आप, मैंने पढ़ा, आपने बताया अभी बच्चों का, तो ये समय आप अकेले रहा करती थी उस समय, आपको कभी ये लगा नहीं कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई घर में नहीं है?
ये सुकून कि मैं स्कूल जा रही हूँ और मेरी पढ़ाई बीच में नहीं छूटी, और उसमें फिर उन बच्चियों को देखना जो चौथी करके तीसरी करके घर में बैठ गई, तो उन लड़कियों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती थी।
कभी रोना नहीं आया आपको अपने हालात पर?
इतना टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ने लिखने का, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं खुद तो मैं शायद स्कूल टाइम में मैं शायद 2 दिन भी अपने आप में नहीं पढ़ी होंगी। मैं बच्चों को त्रिलोकपुरी में ट्यूशन पढ़ाती थी तो 3 बजे से लेकर रात के 11:30-11 बजे तक मैं उनको पढ़ाती थी, क्योंकि वो इलाका बहुत गरीब है तो बच्चों को पूरे महीने पढ़ाती थी, तो एक बच्चा मुझे 50 रुपए देता था।
आपने अपने हिस्से का काम कर लिया और आप जैसी तमाम लड़कियां इस देश में होंगी जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, उनके लिए संक्षेप में क्या करना चाहिए, क्या संदेश देंगी उन्हें?
मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को जो फीमेल्स हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा कीमती हैं, आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, और उससे भी ज्यादा प्रेशियस जो है वो आपके सपने हैं, क्योंकि जिंदगी जीना एक अलग बात है लेकिन बिना सपनों के जीते हैं तो वो जिंदगी का कोई मायने नहीं रहता। तो अपने सपनों को जिंदा रखिए और उसके लिए कुछ अगर कीमत भी चुकानी पड़े तो डरिए मत।
हमारे कई श्रोता हो सकता है रेडियो सुनते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और अखबार के पन्ने भी पलट रहे हों, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक आज के अखबार के दर्शन नहीं किए हैं उन्हें बताने के लिए आ गए हैं दिनेश चतुर्वेदी स्टूडियो में कि आज की सुर्खियां क्या है। दिनेश जी,
जैसा कि आपको भी इंतजार होगा, आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच का, तो कई अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एवी डिविलियर्स की तस्वीर एक साथ छापी है और इसका शीर्षक दिया है विनर्स टेक्स ऑल।
जी, और ये सुना है कि डिविलियर्स की फॉर्म अच्छी नहीं है और दक्षिण अफ्रीका कैंप में इसको लेकर चिंता है, चिंता भारतीय कैंप में भी है। और bbchindi.com पर पहले पन्ने पर खबर लगी हुई है, कोहली इन दो खिलाड़ियों को बाहर करेंगे। वो कौन से दो खिलाड़ी हैं, अगर श्रोता जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का।
जी बिल्कुल, नवभारत टाइम्स ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, आज मैच हारना बिल्कुल मना है,
हारे तो बाहर।
अखबार ने आंकड़ों का हवाला दिया है कि ICC टूर्नामेंट में भारत और दक्षिण अफ्रीका 12 बार भिड़े हैं और जिनमें 8 में बाजी भारत के हाथ लगी है। अगली खबर का रुख करते हैं, केंद्र सरकार ने वेमुला, JNU और कश्मीर पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की अनुमति नहीं देने की खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम में 16 जून से अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फिल्म महोत्सव शुरू हो रहा है। एक और खबर है, माँ और भगवान का विकल्प है गाय।
जी,
दरअसल इंडियन एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने हैदराबाद हाईकोर्ट के एक जज की इस टिप्पणी को पहले पन्ने पर जगह दी है।
उन्होंने कहा था, आजकल न्यायालयों की तरफ से ऐसी टिप्पणी आ रही हैं जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं।
जी, शिवशंकर हैं जज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र करते हुए कहा कि बकरीद के मौके पर मुस्लिम धर्म के लोगों को सेहतमंद गाय को काटने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जज ने उन डॉक्टरों को आंध्र प्रदेश गौहत्या एक्ट 1977 के अंतर्गत लाने की मांग भी की जो कि धोखे से सेहतमंद गाय को अनफिट करार देकर सर्टिफिकेट दे देते हैं।
दिनेश जी, आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी है, 70वां, क्या इससे जुड़ी कोई खबर?
हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये भी खबर है कि आज लालू यादव 70 साल के हो जाएंगे और इस अवसर पर वो 70 पाउंड का केक भी काटेंगे।
यानी नेताओं का जो जन्मदिन का जश्न धूमधाम से मनता है उसकी कड़ी में आज ये और जुड़ेगा।
जी, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसके मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की क्रिकेट सलाहकार समिति ने कोच चुनने के लिए पैसे की मांग की है। यानी कि इस समिति में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और BBS लक्ष्मण हैं। उन्होंने कहा कि जब हम कोच चुनेंगे तो हमको इसका पेमेंट किया जाए। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर सहारनपुर हिंसा की खबर को प्रमुखता से छापा है।
शुक्रिया दिनेश जी, और अब श्रोताओं को सुनाते हैं कि पाकिस्तान के उर्दू अखबारों ने किन खबरों को इस हफ्ते प्रमुखता से जगह दी। समीक्षा पेश कर रहे हैं BBC संवाददाता इकबाल अहमद।
पिछले हफ्ते पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में कतर संकट, ईरान, ब्रिटेन और अफगानिस्तान में चरमपंथी हमला, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात और SCO की बैठक से जुड़ी खबरें प्रमुखता से छपी। सबसे पहले बात करते हैं कतर संकट की। सऊदी अरब समेत 6 देशों ने कतर से राजनयिक रिश्ते खत्म कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कतर से अपने संबंध को कायम रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान का ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत ही गहरे संबंध हैं। एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि इस्लामी दुनिया में एकता बनी रहे, इसलिए वो कतर से अपने संबंध फिलहाल जारी रखेगा। अखबार ने इस मुद्दे पर संपादकीय भी लिखा है। अखबार लिखता है कि इस फैसले से ये बात साबित हो गई है कि तेल पैदा करने वाले खाड़ी देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। अखबार के अनुसार इस एक फैसले ने पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पाकिस्तान और कतर के संबंध भी बहुत अच्छे हैं और सऊदी अरब के नेतृत्व में बनने वाले 39 इस्लामी देशों के सैन्य गठबंधन का भी पाकिस्तान एक अहम हिस्सा है। अखबार के अनुसार सीरिया, यमन और इराक पहले से ही गृह युद्ध के शिकार हैं। बहरीन में अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं। अब अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों में भी हालात बिगड़ने शुरू हो गए तो इसका नुकसान सिर्फ अरब देशों को ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामी जगत को उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद मीर ने जंग अखबार में एक लेख लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि कतर के मामले में सऊदी अरब के साथ साथ ईरान ने भी हालात की नजाकत को नहीं समझा है। मीर कहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के नेताओं का अहंकार पूरी एक नस्ल को युद्ध की आग में झोंक सकता है और यही इस्लाम दुश्मन ताकतों का असली एजेंडा है। अफगानिस्तान में हाल ही में हुए चरमपंथी हमले के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। अखबार दुनिया के अनुसार गनी ने कहा कि पाकिस्तान उनके देश पर अघोषित युद्ध تھوپ رہا ہے، لیکن پاکستان نے افغانستان کے ان آروپوں کو خارج کر دیا ہے۔ پردھان منتری نواز شریف کی ادھیکشتا میں ہوئی سرکشا کونسل کی بیٹھک کے بعد پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان بے بنیاد آروپ لگا رہا ہے اور اسے اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے۔ اخبار نوائے وقت نے لکھا ہے کہ پاکستانی سینا کے کور کمانڈروں کی بیٹھک کے بعد سینا کے پروکتا نے بیان جاری کر کہا ہے کہ افغانستان کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ قزاقستان میں ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی بیٹھک کے دوران پردھان منتری نواز شریف کی ملاقات بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی کے علاوہ چینی راشٹرپتی شی جن پنگ اور روسی راشٹرپتی پوتین سے بھی ہوئی۔ اخبار نوائے وقت کے انوسار پوتین نے پاکستان کو وشواس دلایا ہے کہ وہ پاکستان کو ہر چنوتی سے نپٹنے میں مدد کریں گے۔ بھارت اور پاکستان دونوں کو ایس سی او کی سدسیتا مل گئی ہے۔ اخبار کے مطابق نواز شریف اور مودی کے درمیان صرف رسمی ملاقات ہوئی جس میں دونوں نیتاؤں نے ایک دوسرے کی خیریت پوچھی۔ اخبار دنیا نے امریکی رکشا منترالے کے حوالے سے خبر چھاپی ہے کہ چین پاکستان میں سینے اڈے بنا سکتا ہے، لیکن اس خبر کے آتے ہی پہلے چین اور پھر پاکستان نے اسے محض افواہ قرار دیا ہے۔ اخبار کے انوسار چین نے اسے جھوٹ کا پلندہ بتایا ہے۔
اور اب کھیل کی خبریں۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ ہر میچ میں کرو یا مرو جیسے حالات میں کھیل رہی ٹیموں کے بیچ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں آج بھارت کا سامنا دکشن افریقہ سے ہوگا۔ جو جیتا وہ سیمی فائنل میں پہنچے گا اور جو ہارا وہ باہر۔ بھارت نے پہلے ہی میچ میں پاکستان کو آسانی سے 124 رن سے ہرایا، لیکن اگلے میچ میں سری لنکا کے خلاف 321 رنوں کا بچاؤ نہیں کر سکا۔ کچھ یہی حال دکشن افریقہ کا رہا، وہ سری لنکا سے 96 رن سے جیتا، لیکن اگلے میچ میں پاکستان سے ڈکورتھ لوئس نیم کے آدھار پر 19 رن سے ہار گیا۔ دونوں ہی ٹیموں میں بلے بازوں کی بھرمار ہے، لیکن بھارت اب انتیم 11 میں کسے جگہ دے؟ کیا آر اشوین اور محمد شمی کو کھلائے؟ دوسری طرف دکشن افریقہ بھی کوئنٹن ڈی کاک اور اے بی ڈی ویلیئرز کی خراب فارم سے پریشان ہے۔ ایسے میں بھارت کی رننیتی کیا ہو؟ کرکٹ سمیکشک وجے لوکپلی کہتے ہیں،
ایک طریقے سے ناک آؤٹ سچویشن ہے اور رننیتی یہی رہے گی کہ اگر آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو ایک بڑا لکشیہ بنائیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے پاس بھی اچھے کھلاڑی ہیں، اور اگر آپ پہلے بالنگ کرتے ہیں کوشش آبویسلی یہ رہے گی کہ آپ 250 کے اندر ساؤتھ افریقہ کو آؤٹ کر لیں۔ پر جو بھی ہو ایک انٹرسٹنگ میچ دیکھنے کو ملے گا۔
ادھر کل انگلینڈ نے برمنگم میں کھیلے گئے مقابلے میں آسٹریلیا کو ڈکورتھ لوئس نیم کے آدھار پر 40 رن سے ہرایا، اور اس ہار کے ساتھ ہی آسٹریلیا ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ انگلینڈ کی جیت کا فائدہ بنگلہ دیش کو ملا اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ کل ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا نے 9 وکٹ کھو کر 277 رن بنائے، اور بارش کے کارن جب کھیل رکا تب انگلینڈ نے وین اسٹوکس کے ناباد 102 رنوں کی مدد سے 40.2 اوور میں 4 وکٹ کھو کر 240 رن بنائے تھے۔ ادھر فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں کل مہیلا ایکل ورگ کا خطاب غیر وریتا حاصل لاتویا کی یلینا اوسٹاپینکو نے اپنے نام کیا۔ 20 ورشیا اوسٹاپینکو نے فائنل میں تیسری وریتا حاصل رومانیا کی سیمونا حالپ کو 4-6, 6-4, 6-3 سے مات دی۔
اور شروتاؤ، ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ آج ہونے والے میچ کے گیند در گیند کا حال اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو لگاتار رخ کر سکتے ہیں bbchindi.com کے پنے کا۔ ہمارے پاس لگاتار اس میچ کی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپڈیٹ لگاتار ملتی رہے۔ وقت ہو چلا ہے کارکرم کے سماپن کا، لیکن مکھیہ سماچار ایک بار پھر سن لیتے ہیں دنیش اپریتی سے۔
بی بی سی سماچار۔ سیریا میں امریکہ سمرتھت سیریائی سیناؤں نے کتھت اسلامک اسٹیٹ کی اگھوشت راجدھانی رقہ پر شکنجہ کس دیا ہے۔ ایران کے خفیہ معاملوں کے منترالے نے کہا ہے کہ سرکشا بلوں نے پچھلے ہفتے تہران میں ہوئے چرمپنتھی حملے کے ماسٹر مائنڈ کو مار دیا ہے۔ لیبیا کے پورو نیتا کرنل گدافی کے سب سے چھوٹے بیٹے سیف الاسلام کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل جیپ سیسن نے کہا ہے کہ جیمس کومی کی گواہی کے جواب میں وہ منگلوار کو سینیٹ کی انٹیلیجنس سمیتی کے سامنے پیش ہوں گے۔ جرمنی کی ودیش منتری سگمر گبریل نے چیتاونی دی ہے کہ قطر اور کھاڑی دیشوں کے بیچ وواد یدھ میں بدل سکتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ اہم مقابلہ آج اوول میں کھیلا جائے گا۔ لاتویا کی ایلینا اوسٹاپینکو نے فرینچ اوپن کا مہیلا سنگلز خطاب جیت لیا ہے۔ بی بی سی سماچار۔
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी देवाशीष कुमार के हाथ। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक बदलती खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।